फिर 10 मिनट विश्राम कर रहा था, क्योंकि कल मैं पंजाबी बाग में था और सुबह लेक्चर वहां दिया था। तो हमारे वेद व्यास प्रभु आए और कहा वेद व्यास है नहीं, कहा कि थोड़ा सा 10-15 मिनट बोल के जाओ। तो और साथ में उन्होंने मुझे रथ यात्रा का निमंत्रण दिया। आपकी रथ यात्रा है सोमवार 19 नवंबर, सब जानते हो। तो मैंने सोचा कि संक्षेप में आपको जगन्नाथ जी की कथा सुनाएं, ठीक है। तो आज से हजारों साल पूर्व एक राजा थे जिनका नाम था महाराज इंद्रदुम्न। बड़े धार्मिक राजा थे, उनके मन में एक ही भाव था, विष्णु की सेवा। और किसी प्रकार से भौतिक आकर्षण नहीं था। उनका सारा दिन बीत जाता था भगवत कथा में और संतों के स्वागत में। प्राचीन समय में जब हमारे राजा भी होते थे, संतों को बहुत आदर देते थे, उनका स्वागत करते थे। जैसे आज सुबह हम पंजाबी बाग में लेक्चर दे रहे थे चित्रकेतु महाराज की कथा के ऊपर, और चित्रकेतु महाराज के महल में दो संत आए थे, अंगिरा ऋषि और नारद मुनि, और बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने उनका आभार प्रकट किया, क्योंकि चित्रकेतु महाराज की अज्ञानता को उन्होंने शिक्षा देकर दूर किया। इसी प्रकार आप पढ़ते हो भागवतम के 34 स्कंद में, प्रीतु महाराज ने बड़े आदर के साथ ब्रह्मा के पुत्र 4 कुमारों का स्वागत किया। तो महाराज इंद्रदुम्न के मन में भी सदा यही भाव था। क्या भाव? विष्णु की सेवा, और कोई भाव नहीं था। तो एक दिन वहां उनके महल में एक संत आया। उन संत ने कहा, राजा इस पृथ्वी पर एक भगवान का प्रकट हुआ प्रकट हुई मूर्ति है, जिसका नाम है नील माधव। और अगर तुम्हें कभी इस नील माधव का दर्शन मिले तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा इस विग्रह का दर्शन लेकर। और ये कह के वो संत चल पड़ा। दो प्रकार की मूर्तियां होती हैं, एक है सेल्फ मैनिफेस्टेड, मतलब कि जो खुद ही प्रकट होती हैं, और दूसरा है जो बनाई जाती हैं आदेश के अनुसार। जैसे आपके इस मंदिर में श्री श्री राधा पार्थसाथी का विग्रह है, ललिता विशाखा के साथ, सीताराम लक्ष्मण हनुमान और गौनिताई। तो ये जो हैं ये सेल्फ मैनिफेस्टेड या स्वयं प्रकट हुई मूर्तियां नहीं है। होती तो अच्छा होता, पर ये मूर्तियां बनाई गई थी आदेश के अनुसार और फिर शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार इनकी स्थापना हुई है। पर भारत में कई सेल्फ मैनिफेस्टेड मूर्तियां हैं, जैसे बालाजी और रेमुना में है, राधा गोपीनाथ किचड़ गोपीनाथ का विग्रह। तो नील माधव जो है सेल्फ मैनिफेस्टेड, खुद स्वयं प्रकट हुई मूर्तियां थी, मूर्ति हैं। तो इस संत ने कहा कि एक राधा नील माधव के विग्रह का अगर आपको दर्शन मिल जाए तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो राजा में बड़ी रुचि थी कि नील माधव का दर्शन मिले। और राजा ने अपने ब्राह्मणों को पूरे पृथ्वी के हर कोने में भेज दिया, किसी को उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, ईस्ट वेस्ट, सब जगह। उस सबको कहा, घर घर जाओ और नील माधव को खोजो। तो ये सारे ब्राह्मण घर घर गए, उनको आदेश था नील माधव, ये पता लगाओ नील माधव का दर्शन कहाँ मिलेगा, कौन से मंदिर में, कौन से जंगल में, किसके घर में। तो हर घर जाने का आदेश दिया। किसने? राजा ने। तो ब्राह्मण सारे गए, कई कई एक कोई किसी कोने में, कोई किसी कोने में, वो सारे ब्राह्मण सब जगह घूमकर वापस आ गए। सब ने राजा को कहा, हम हमारे इलाके में हर घर में गए, हर मंदिर में गए, हर जंगल में गए, हमें नील माधव कहाँ नहीं मिले, और किसी ने नील माधव का नाम भी नहीं सुना। ये सूचना केवल आपके पास ही है। पर एक ब्राह्मण था विद्यापति, जो वापस नहीं लौटा, बाकी सारे ब्राह्मण लौट गए। जो विद्यापति ब्राह्मण था वो एक जंगल में था, जहां वो रह रहा था, बड़ा निर्णय हो दृढ़ होकर कि मैंने नील माधव को ढूंढना ही है। और उस जंगल में उनका संबंध हो गया एक खानदान के साथ, खास करके विश्वासु, जो कि नीची जाति के थे, जानवरों की देखभाल करते थे, जंगल में थे। वो इनका जो नेता था उसका नाम था विश्वासु। तो विद्यापति का विश्वासु से संबंध हुआ, और विश्वासु की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। विद्यापति ने देखा कि हालांकि विश्वासु नीची जाति का है, पर उसमें हर प्रकार के गुण हैं वैष्णव के। उसने ये भी देखा कि विश्वासु की जो बेटी है ललिता, हालांकि नीची जाति की है, पर अनेक आध्यात्मिक गुण हैं उसमें। तो जो भक्त हैं वो तो खैर नीची ऊंची जाति में विश्वास नहीं करते। और फिर विश्वासु भी विद्यापति के आचरण से बड़े प्रभावित हुए थे, और उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते। उनका विवाह हो गया और विद्यापति विश्वासु के घर में रहने लगा। विश्वासु ने, विद्यापति ने अनुभव किया कि विश्वासु रोज घर से निकल जाता है दोपहर के समय, और फिर अगले दिन लौटता है 24 घंटे 30 घंटे बाद। और जो वो लौटता है तो उसके शरीर से इतनी खूबसूरत खुशबू आती है कि ऐसे लगता है कि वो स्वर्ग से आ रहा है। चंदन की खुशबू आती है उनके शरीर से, लोग परफ्यूम लगाते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, पर ये था नेचुरल परफ्यूम। तो विद्यापति ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पिताजी रोज कहाँ जाते हैं? वो छू मंत्र हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर एक दिन दो दिन बाद वापस आते हैं, और जब आते हैं तो ऐसे लगता है कि वो स्वर्ग से आ रहे हैं, उनके शरीर से इतनी अच्छी खुशबू आती है, कहाँ जाते हैं? तो पहले तो उनकी पत्नी हिचक रही थी, कह रही थी मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे पिताजी कहाँ जाते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है किसी को नहीं बोलना मैं कहाँ जाता हूं। फिर पति ने कहा, मैं तो तुम्हारा पति हूं, मेरे से क्यों छुपा हो रहे छुपा रहे। फिर बेटी ने, पत्नी ने कहा कि एक विग्रह है नील माधव का, जंगल के बिल्कुल अंदर, बिल्कुल एकांत के स्थान में, किसी ने उसका दर्शन नहीं लिया है, और मेरे पिता रोज आते हैं उनकी सेवा करने के लिए, और किसी को वो साथ नहीं ले जाते, और किसी के पास सूचना नहीं है कि नील माधव कहाँ है। तो विद्यापति तो खुश हो गए, क्योंकि उनके राजा ने उन्हें भेजा था किस आदेश के साथ, खोजो कहाँ है नील माधव। तो विद्यापति ने ललिता से कहा, तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? नील माधव के पास। उसने कहा नहीं, मैं खुद नहीं जानती कहां है नील माधव, फिर मेरे पिताजी जानते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी मुझे वहां ले जाएंगे? ललिता ने कहा नहीं, किसी हालत में नहीं ले जाएंगे। पर विद्यापति ने कहा थोड़ी विनती करो ना, मुझे ले जाए। तो बेटी ने बड़ी खुशामद की पिता की, मेरे पति को ले जाओ नील माधव का दर्शन दिलाने के लिए। तो पिता ने कहा ले जाऊंगा पर एक शर्त पर, मैं उनकी आंखों में पट्टी बांधूंगा तो उनको पता नहीं लगे कि मैं उन्हें कहां ले जा रहा हूं, और जब पहुंचूंगा नील माधव के पास फिर उन्हें पट्टी खोल दूंगा और वह दर्शन ले सकते हैं। तो ललिता ने कहा मंजूर है आपकी शर्त। पर ललिता विद्यापति बड़े होशियार थे। ललिता ने मस्टर्ड सीड्स, क्या कहते हैं, हाँ, सरसों के बीज को इकट्ठा करके एक सफेद कपड़े में लपेट, सफेद कपड़े में लपेट दिया सरसों के बीज को, और उनको विद्यापति की धोती के साथ जोड़ दिया। तो योजना ये थी कि जब वो जाएंगे, जब विद्या विश्वासु विद्यापति को हाथ पकड़ कर ले जाएगा, तो जो विश्वास विद्यापति है रास्ते में वो सरसों के बीज छोड़ फेंकते जाएंगे, तो इस प्रकार उन्हें पता रहेगा कि किस रास्ते से चलना चाहिए नील माधव के पास पहुंचने के लिए। तो पूरे रास्ते में विद्यापति सरसों के बीज फेंकते गए। जब वो पहुंचे नील माधव के चरणों में, तो विश्वासी ने पट्टी खोल दी और विद्यापति ने नील माधव का दर्शन लिया पहली बार। जब दर्शन लिया इतना आनंद आया कि विद्यापति सोचने लगा हाँ, मेरे राजा ने ठीक कहा था, किसी हालत में भी नील माधव का दर्शन लेना है। और विद्यापति बड़ा खुश हुआ दर्शन लेकर। साथ में उसने ये देखा कि जब वो पहुंचे नील माधव के पास, तो जो विश्वासु था उनका ससुर, वो बहुत सेवा में लगा था, झाड़ियों में जाकर फल ढूंढ रहा था भगवान को भोग लगाने के लिए। वे जंगल में अलग अलग स्थानों में जाकर फूल इकट्ठा कर रहा था, किस लिए, नीलमाधव के लिए हार बनाने के लिए, बड़ा परिश्रम कर रहा था, और फिर भगवान का श्रृंगार कर रहा था, मसाज दे रहा था भगवान को, सब अकेले, बिल्कुल अकेले। हमारे डीडी डिपार्टमेंट में तो 15 पुजारी हैं सेवा करने के लिए, ये विश्वासु बिल्कुल अकेले सारी पूजा कर रहा था। तो विद्यापति बड़ा प्रभावित हुआ। विद्यापति ने वहां देखा कि नील माधव की विग्रह के सामने एक छोटा सा तालाब था, और तालाब के ऊपर पास में एक पेड़ था, और पेड़ में एक कौवा बैठा हुआ था, और वो कौवा, उस कौवे को नींद आई और वो तालाब में गिर गया और मर गया। और तुरंत ही उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और भगवान के धाम चला गया। तो विद्यापति सोचने लगा मैं भौतिक संसार में क्या कर रहा हूं, इस तालाब में मुझे भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अगर इस कौवे को दिव्य रूप प्राप्त हो सकता है और भगवान के धाम जा सकता है तो मैं तो जरूर जा सकूंगा। तो विद्यापति सोच रहा था मुझे भी यहां आत्महत्या करने दो, आत्महत्या करके मैं भी भगवान के धाम चले जाऊंगा, भौतिक संसार में है क्या, कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश है कि नहीं। हम भौतिक संसार में सोचते हैं सुख है, पर है सुख? हाँ सचमुच कह रहे हो नहीं, पर लगता था कि है, क्योंकि कोई भौतिक संसार छोड़ना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। सबका बड़ा गहरा आकर्षण है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। बूढ़ा व्यक्ति भी डॉक्टर से क्या कहता है, थोड़ी ज्ञान बचा दो किसी प्रकार से, कोई मरना नहीं चाहता। पर आत्मज्ञानी व्यक्ति के विषय में शास्त्र में कहा गया है, जिसका पक्षी पंखे उड़ जाता है घोंसले से, आत्मज्ञानी व्यक्ति या जिसने भक्ति में जीवन को बिताया है वो घबराता नहीं मृत्यु के बारे में। जो विद्यापति सोच रहा था मुझे भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए इस तालाब में, और मैं भी भगवान के धाम जाऊं, पर फिर उसी समय एक दिव्य वाणी द्वारा उन्हें सूचना मिली, विद्यापति तुम आत्महत्या का क्यों सोच रहे हो, तुम्हें तुम्हारे राजा ने भेजा था नील माधव को खोजने के लिए, और अब तुम्हें सूचना मिल गई कि नील माधव कहां है, तो आत्महत्या क्यों कर रहे हो, जाओ राजा के पास, उन्हें सूचना दो कि नील माधव का स्थान तुम्हें पता लग गया है। तो नील तो विद्यापति ने आत्महत्या का जो भाव था छोड़ दिया। तो विद्यापति यही सोच रहा था मैं जाकर राजा को ये सूचना दूंगा, क्या क्या सूचना, कि नील माधव का दर्शन प्राप्त है। पर उसी समय विश्वासु ने एक देवीय संदेश सुना, जिसमें नील माधव ने कहा मैं तो इस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, पर मैं चाहता हूं कि मेरे रहने के लिए एक बड़ा मंदिर बनाया जाए जो इंद्रद्युम्न स्वामी बना सकते हैं। तुम इतने सालों से मेरी पूजा कर रहे हो जंगल में, पर अब मैं जरा ज्यादा आराम के साथ रहना चाहता हूं। ये था किसका संदेश, नील माधव। और भगवान की खुशी के लिए तो सबसे सुंदर स्थान होना चाहिए, है ना। आप देखते हो हर पूरे विश्व में हर जगह लोग बड़ी बड़ी कोठी बना रहे हैं, जैसे धन कमाते हैं कि पहले सबसे पहले क्या, बड़ी कोठी चाहिए, बड़ी मोटर चाहिए, दुनिया को दिखाएं कि हम धनी हैं। तो भक्तों का क्या भाव रहता है, भगवान के लिए सुंदर से सुंदर मंदिर बनाया जाए। जैसे वृंदावन में छह गोस्वामी थे जो चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े प्रिय शिष्य और भक्त हैं, और चैतन्य महाप्रभु जी ने जब रूप और सनातन को वृंदावन भेजा तो उन्होंने खास आदेश दिया दो मुख्य कार्यों के लिए। एक कहा कि ब्रज में जाकर मंदिरों की स्थापना करने के लिए, दूसरा ग्रंथों की रचना करने के लिए। और वृंदावन में अगर आज आप हजारों मंदिर देखते हो, ये सब आरंभ हुए थे किसकी प्रेरणा से, रूप और सनातन गोस्वामी की प्रेरणा से। उन्होंने दूसरों को प्रेरणा दी मंदिर बनाने के लिए, और अपने रहने के लिए एक बड़ी कोठी बनाई उन्होंने, खुद रहते थे कहां, नीचे नीचे छोटे पेड़ के। तो प्रभुपाद जी ने कहा इस विषय पर, प्रभुपाद जी ने कहा हम तो हमारा भजन पेड़ के नीचे बैठकर भी कर सकते हैं, हमें मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं। पर हम मंदिर बना रहे हैं किसके लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए। जैसे कि जब आपका ये मंदिर बंगाली मार्केट में था, मुझे याद है टोडरमल लेन, 18 टोडरमल लेन, तो आते थे इतवार के दिन 10-20 लोग, 30-25 लोग। आज आपके इस मंदिर में कितने लोग आते हैं, 300-400-500 लोग हर रविवार को। और ये दिल्ली का एक ही मंदिर है। कल रात को मैंने पंजाबी विभाग में लेक्चर दिया था, वहां कम से कम 400-500 आदमी थे, भक्त थे। और इसी प्रकार नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव अनेक स्थान है जहां की मंदिर है। तो मंदिर बनाने पर अगर मंदिर में अच्छा प्रचार भी हो और अच्छा वातावरण हो तो हजारों लोग आते हैं। और इसी भावना के साथ प्रभुपाद जी ने मंदिरों की स्थापना की। पहले तो प्रभुपाद जी ने उनके गुरु महाराज के आदेश के अनुसार पश्चिम देशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना की। पश्चिम देशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के बाद प्रभुपाद 100 विदेशियों को लेकर, खास करके अमेरिकन और कैनेडियन भक्तों को लेकर भारत में आए। और प्रभुपाद की क्या योजना थी, भारत के खास शहरों में अगर प्रसिद्ध मंदिर बनेंगे तो उसके द्वारा दूसरों पर अच्छा प्रभाव होगा। तो इस भाव के साथ प्रभुपाद जी ने मायापुर में जमीन खरीदी, योजना बनाई मायापुर में मंदिर बनाने के लिए। और इस समय जो अद्भुत मंदिर जिसका वर्णन ठाकुर भक्तिनाथ जी ने किया था, नित्यानंदा जी ने, वो मंदिर बन रहा है मायापुर धाम में, जो भारत का शायद सबसे बड़ा मंदिर होगा। इस फिर प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वृंदावन में मंदिर बने। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि बॉम्बे भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, वहां मंदिर होना चाहिए। तो वहां मंदिर बना, वहां बनाने का प्रभुपाद जी ने प्रयास किया। हालांकि बॉम्बे मंदिर बनाने के लिए प्रभुपाद को काफी बड़ा संघर्ष करना पड़ा, कई 4-5 साल कई काफी वकीलों के पास जाना पड़ा। पर प्रभुपाद जी चाहते थे कि बॉम्बे जैसे शहर में मंदिर बने। और आज बॉम्बे में 4 मंदिर हैं और 3 मंदिर और बन रहे हैं एक साथ बॉम्बे में। आपके दिल्ली में भी इस समय कितने मंदिर हैं, 8 मंदिर हैं, और एक साथ भी कई मंदिर और बनने जा रहे हैं। रोहिणी का मंदिर शुरू हो रहा है हमारे वेदव्यास प्रभु के निर्देशन में। वेदव्यास भैया, अच्छा, फिर बहुत ही जल्द द्वारका का मंदिर शुरू होने जाएगा, उसके साथ भादुरगढ़, गुड़गांव, गाजियाबाद में एक नया स्थान मिल रहा है। तो ये जो मंदिर बन रहे हैं किसके लिए, ये मंदिर बन रहे हैं भगवान की खुशी के लिए, कि बस जीव जो जुड़े हुए हैं भौतिक कार्य में उन्हें ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां वो आ सके भगवान का दर्शन लेने के लिए। तो एक दिव्य वाणी नील माधव ने विश्वासियों से कहा, अब मैं एक बड़े मंदिर में रहना चाहता हूं, तुमने जंगल में मेरी बहुत सेवा की पर अब मैं जंगल में नहीं रहना चाहता। तो विश्वासु घबरा गया। विद्यापति को पता है कि नील माधव कहां है, और अगर नील माधव की सूचना दे दिया, उसने दे दिया महाराज जनदुमना को, तो मुझे तो किसी हालत में सेवा करने नहीं देंगे, क्योंकि मैं तो नीची जाति का आदमी हूं, मुझे तो अंदर मंदिर में प्रवेश भी नहीं करने देंगे। सेवा की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि उस समय रिवाज था कि नीची जाति के लोगों को कई बार कई मंदिर में प्रवेश भी नहीं करने देते थे। इसलिए कई नीची जाति के लोग मुसलमान बन गए प्राचीन समय में। प्रभुपाद जी इस भाव का बड़ा विरोध करते थे। तो उन्होंने विद्यापति को गिरफ्तार कर लिया। तुम जाकर बता दोगे राजा को विद्या नील माधव कहां है और मेरी पूजा मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी। और फिर छोड़ दिया, आखिर उनका दमाद था। तो विद्यापति वापस लौटे, कहां पहले घर और फिर गए महाराज के पास। उन्हें राजा को कहा, मैंने ढूंढ लिया है नील माधव को, मैं नील माधव का दर्शन लेकर आ रहा हूं, और ये बात सच है, नील माधव का दर्शन कोई भी लेगा तो आनंद ही आनंद अनुभव करेगा। तो राजा बड़ा खुश हुआ, आभारी था। राजा ने कहा, चलो सेना लेकर चलते हैं नील माधव का दर्शन लेने के लिए। और सेना लेकर, रास्ता तो नील विद्यापति को पता था, क्योंकि जो सरसों के बीज जो फेंके थे अभी थोड़े पेड़ भी बन गए थे, तो रास्ता उन्हें पता था। पर जब वो उस स्थान पर पहुंचे जहां की नील माधव का दर्शन लिया था, उन्होंने देखा नील माधव है ही नहीं, वह प्रकट हो गए। तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा यह विश्वासों की शरारत होगी, मेरे से छुपा दिया है नील माधव को। तो राजा ने विश्वासों को गिरफ्तार कर लिया, तुम्हारी शरारत बताओ, कहां है नील माधव, कहां है मेरे नील माधव। तिल विश्वासों ने कहा सच यह है कि मुझे खुद नहीं पता कहां नील माधव, कहां प्रकट हो गए, मुझे खुद नहीं मालूम। बड़ा उदास था विश्वासों भी। तो राजा के हृदय में बड़ा दुख हुआ कि मुझे नील माधव का दर्शन अभी नहीं मिलेगा, मैं बड़े उत्साह से आया था पर अब दर्शन नहीं मिलेगा, ये मेरा दुर्भाग्य है। और राजा ने फास्टिंग व्रत रखना शुरू कर दिया। भक्त जो है कभी किसी और को दोष नहीं देता। वैसे तो हम भौतिक संसार में लोगों को दोष देते रहे, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण ये हुआ, देखो। पर भक्त जो है किसी को दोष नहीं देता, सारा दोष अपने आप को देता है। तो राजा व्रत रख रहा था तो उस पर एक दिव्य वाणी द्वारा उन्हें सूचना मिली। संदेश क्या था, नील माधव ने कहा मैं अब अप्रकट हो गया हूं, मैं प्रकट होऊंगा किस रूप में, दारू ब्रह्मा के रूप में, और उस रूप में प्रकट होऊंगा और एक लकड़ी का लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा उस दरिया में प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि किस स्थान में प्राप्त होगा, और उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर तुम मेरा विग्रह बना सकते हो। तो राजा गए उस स्थान पर जिसकी सूचना प्राप्त हुई थी, और वहां उन्होंने देखा यस सचमुच वो लकड़ी का टुकड़ा वहां था, बहुत भारी। तो राजा का यह भाव था कि अगर इसे के महल में ले जाएं, ले आए तो स्कल्प्टर को बुलाकर भगवान का रूप बनाएंगे। तो राजा ने पहले तो खुद प्रयास किया वो भारी लकड़ी के टुकड़े को उठाने के लिए, पर उठा नहीं पाया, बिल्कुल नहीं हिला वो, इतना भारी था। फिर राजा ने अपने सेवकों को कहा तुम सब मिलकर उठाओ, और कोई उठा नहीं पाया। फिर राजा ने कहा अपनी सेना को तुम उठाओ, सारी सेना ने प्रयास किया उस लॉग ऑफ वुड को उठाने के लिए, कोई उठा नहीं पाया। तो राजा फिर दुखी हो गया। अब ये चांस था भगवान का रूप बनाने का, और इस लकड़ी में वही विष्णु के निशाने थे। तो राजा फिर बड़ा दुखी हो गया। तो फिर वो सोचा था मुझे फिर व्रत रखना चाहिए। फिर एक दिव्य वाणी द्वारा उन्हें संदेश मिला अगर तुम इसे उठाना चाहते हो तो मेरे जो दो भक्त हैं विश्वासी और विद्यापति उनको बुला कर लाओ, वो मुझे उठा सकेंगे, तुम नहीं उठा सकोगे, तुम्हारी सेना नहीं उठा सकेगी। तो राजा ने निमंत्रण दिया विश्वासी और विद्यापति को, और विश्वासी और विद्यापति जैसे आए तुरंत एक मिनट में बड़ी सरलता से उस लकड़ी के लॉग ऑफ वुड को उन्होंने बड़े आसानी से उठा लिया, और इनको एक सोने के रथ में बिठाकर ले आए कहां, राजा के महल में। तो राजा ने कई कारीगरों को निमंत्रण दिया, आओ भगवान का रूप बनाओ इस लकड़ी के लॉग ऑफ वुड को लेकर। स्वयं कईयों ने प्रयास किया, वो जैसे ही वो शुरू करते थे काम करने के लिए उनके हथियार सारे टूट जाते थे। कईयों ने प्रयास किया, कोई भी कुछ कर नहीं पाया। राजा फिर दुखी हो गया कोई इस लकड़ी के लॉग ऑफ वुड को कुछ कर ही नहीं सकता। फिर वहां आए विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में, और विश्वकर्मा ने कहा मैं भगवान का रूप बनाऊंगा इस लकड़ी से, पर एक शर्त पर, 21 दिनों के लिए मुझे बिल्कुल एकांत में छोड़ दो, और अगर कोई भी अंदर आया तो मैं अप्रकट हो जाऊंगा और काम अधूरा रह जाएगा। तो ये था उनका संदेश कि मुझे एकांत में बनाने के लिए सुविधा दो। तो राजा ने कहा मंजूर है, और विश्वकर्मा ने टिक 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 करके काम शुरू किया। तो विश्वकर्मा टिक 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 कर रहा था, राजा दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। जैसे आप लोग कीर्तन सुनते हो, लोग करताल बजाते हैं, मृदंगा बजाते हैं, तो राजा को इतना आनंद आ रहा था टिक 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 सुनकर। उसे लग रहा था भगवान का रूप प्रकट हो रहा है। जब हम लोग बॉम्बे का मंदिर बना रहे थे तो मंदिर तो पूरा समाप्त नहीं हुआ था, तो श्रील प्रभुपाद जी आए थे अपने क्वार्टर्स में रहने के लिए पांचवी मंजिल में। तो प्रभुपाद थे पांचवी मंजिल में, वो नीचे काम चल रहा था नए मंदिर का, ठीक 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 ठीक। तो प्रभुपाद जी को बड़ा आनंद आ रहा था। प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज कीर्तन। प्रभुपाद जी सुन रहे थे ठीक 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 ठीक, ईंट को पत्थर पे तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते ये तो कीर्तन है क्योंकि भगवान का मंदिर बन रहा है। तो राजा को बड़ा आनंद आ रहा था ठीक 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 सुनते हुए, बड़ा खुश था राजा। उसको लग रहा था कि भगवान का रूप प्रकट हो रहा है, जो कि उनकी इच्छा थी दर्शन लेने के लिए। तो 14 दिन बाद उन्होंने देख अनुभव किया, वो टिक टिक बंद हो गई आवाज। राजा घबरा गया। राजा ने कहा टिक टिक बंद हो गया, कहीं विश्वकर्मा मर तो नहीं गया, हमने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, पीने के लिए नहीं दिया 2 हफ्तों के लिए। और राजा की पत्नी का नाम था गुंडीचा। गुंडीचा कहने लगी मुझे लगता है, शक है कि विश्वकर्मा शायद मर गया हो, क्योंकि हमने कुछ खाने के लिए नहीं दिया, कुछ अंदर चलकर देखो तो सही वो जिंदा है या नहीं। राजा ने कहा विश्वकर्मा की शर्त थी कि 21 दिन के लिए किसी को अंदर नहीं आना चाहिए। हाँ, और तो राजा ने कहा कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों को निमंत्रण दिया, वो मंत्रियों की सलाह ली क्या करना चाहिए इस स्थिति में। अभी तो वो टिक टिक आवाज नहीं आ रही, और विश्वकर्मा ने कहा था 21 दिन तक किसी को अंदर नहीं आना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा नहीं नहीं हमें अंदर नहीं जाना चाहिए 21 दिन तक किसी हालत में। पर गुनीचा ने कहा नहीं नहीं जाओ जाओ जो देखो अंदर क्या है। तो राजा अंदर आए, और जब अंदर आए तो क्या उन्होंने देखा कि विश्वकर्मा अप्रकट हो गए हैं, और ये जो रूप आप देखते हो जगन्नाथ सुभद्रा बलराम का ये रूप वहां उपस्थित है। जब राजा तो जब राजा ने पहली बार देखा इस रूप को तो उन्हें लगा कि ये रूप अधूरा है। अगर पहली बार जगन्नाथ जी को देखो तो ऐसे लगता कि ये रूप अधूरा है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। और राजा के हृदय में शोक था, मैं क्यों अंदर आया जब मुझे कहा था कि 21 दिन तक बाहर रहने के लिए। उसी समय वहां पहुंच गए नारद मुनि। नारद मुनि ने कहा कि ये भगवान की इच्छा थी कि तुम अंदर आओ, और ये जो आप जगन्नाथ से बदला बलराम का रूप देख रहे हो ये अधूरा नहीं, ये प्रमाणिक है। और फिर इस विग्रह की स्थापना की ब्रह्मा जी ने आकर। तो ऐसे तो कई वर्जन हैं कई इस विषय पर, इस संक्षेप में आपको जगन्नाथ जी के प्रकट होने का कि कथा सुनाई। तो जगन्नाथ जी के पैर नहीं हैं, पर भी जब भी जगन्नाथ जी सारे विश्व में चलते हैं, है ना, कैसे चलते हैं, हाँ, रथ यात्रा के माध्यम से। तो आपके दिल्ली में 19 नवंबर को रथ यात्रा है, सब आओगे तो भगवान जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि सबको अपना दर्शन देते हैं। प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो रथ यात्रा की योजना करते थे, और आज इस्कॉन भक्तों द्वारा सारे विश्व में यह रथ यात्रा निकल रही है। कल कैथल में हुई थी रथ यात्रा। तो भगवान जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, उनकी कई लीलाएं हैं। जब इस्कॉन में सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी पहले स्थापित हुए थे, और प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को नाम दिया था न्यू जगन्नाथपुरी। तो उन दिनों में हमारे सारे भक्तों ने जगन्नाथ जी की छोटी मूर्ति को पहनना शुरू कर दिया था। तो हमारे एक अमेरिकन भक्त थे माधव बीजा। तो उन दिनों में अमेरिका का युद्ध हो रहा था वियतनाम के साथ, तो सब जवानों को जबरदस्ती सेना में जाना पड़ता था 1-2 सालों के लिए। तो हमारे एक भक्त हैं माधव बीजा, उनको गवर्नमेंट से नोटिस आया था, कम फॉर मेडिकल चेकअप, यू आर बीइंग ड्राफ्टेड इन द आर्मी, तुमको आर्मी में डाल रहे हैं तो मेडिकल के लिए आओ। तो हमारे माधव बीजा जी गए मेडिकल के लिए, उनके गले में था छोटे से जगन्नाथ। तो अमेरिकन डॉक्टर कहने लगा, व्हाट इज दैट स्टैच्यू इन योर नेक, तुम्हारे गले में क्या है वो? तो माधव बीजा ने कहा, दिस इज लॉर्ड जगन्नाथ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। डॉक्टर ने कहा, टेक इट आउट, थ्रो इट अवे, यू कैन्ट वेयर दिस इन द आर्मी, कि इसे फेंक दो। तो माधव बीजा ने कहा, इसको मैं कैसे फेंकूं, ये तो मेरे भगवान है, ये तो सदा मेरे साथ रहेंगे। तो डॉक्टर ने कहा, दिस मैन इज क्रेजी, वी डोंट वॉन्ट हिम इन द आर्मी। तो माधव बीजा की इच्छा तो नहीं थी आर्मी में जाने के लिए। डॉक्टर ने कहा, ये पागल है, हमें ये आर्मी आर्मी में नहीं चाहिए। तो जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, अब मुझे कैथल जाना है। हरे कृष्णा। तो एक और सूचना थी, जैसे आप जानते हो हर साल इसको उनके भक्तों के द्वारा क्या प्रयास किया जाता है,
बुक डिस्ट्रीब्यूशन का,
ग्रंथों के वितरण की सेवा की जाती है। आप सब जुड़ते हो हर साल सब? पिछले साल हम लोगों ने कितना किया था?
3 लाख।
तो पिछले साल आप भक्तों ने मिलकर लगभग 3,80,000 की बड़े ग्रंथ बांटे थे।
उससे पहले
3,33,000, उससे पहले और थोड़ा कम था, उससे पहले और थोड़ा कम था। तो आपके ख्याल से इस साल क्या कोटा होना चाहिए?
4.5, 5?
अच्छा, आपका नाम? हाँ, अच्छा, 4 और 5 के बीच में कितना होना चाहिए, 5 कि 4.5? तो जो आप सब साथ जुड़ोगे पक्का, नवंबर 15 से मैराथन शुरू होने जा रहा है, तो एक महीना मिलने मजा है। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, आप सब प्रचार के महिमा को जानते हो। आज सुबह वो चित्रकेतु की कथा के श्लोकों में प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भक्तों का असली भाव रहता है कि ये ज्ञान हर जगह पहुंचाया जाए। तो अगर ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया जाता है तो इस कारण कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। अगर आप सब आज जुड़े हो, अगर दिल्ली में आज हजारों भक्त हैं, आपके मॉस्को शहर में कोई 10,000 भक्त हैं जो सोलामाना करते हैं, तो आपके दिल्ली से भी ज्यादा। तो अगर आज अगर हजारों भक्त जुड़े हैं, सारे विश्व में जुड़े हैं भक्तों के प्रचार और ग्रंथों के कारण, तो इसलिए बल दिया जा रहा है क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान का संदेश और साथ में प्रभुपाद और अनेक शुद्ध भक्तों के तात्पर्य जिसके द्वारा लोगों की अज्ञानता दूर हो रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब जुड़िए। मैं तो अभी मैराथन तक रविवार को नहीं होऊंगा, ये दिस इज माय लास्ट संडे। आप सब जुड़ोगे मैराथन में सब? तो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट मोहन रूपा प्रभु आपको इस विषय में सूचना देंगे। और जैसे भगवान गीता में कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा। तो आप सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हो कि आप से किसी को लगता है इन दिन हम तो बहुत प्रिय हो चुके हैं और कृपा नहीं चाहिए? और कृपा चाहिए या नहीं सबको? तो सब जुड़ोगे? तो योजना प्रयास आज से शुरू करना पड़ेगा। 15 तारीख से तो हम ग्रंथों को बांटना चाहते हैं। एक समय था कुछ साल पहले हम लोग मैराथन शुरू करते थे और कई बार किताबों की कमी हो जाती थी और बीबीडी को हम कहते थे और छापो और छापो और छापो। अभी पिछले 3 सालों से बीबीडी सारे ग्रंथ छाप देती है अप्रैल मई से। वो तो आज जो किताबें आप बांटोगे अभी दिसंबर में सब स्टॉक तैयार है। तो आपने 5 लाख गीता का ऑर्डर दिया है अभी, तो 5 लाख गीता यहाँ पहुंच जाएंगे अगले हफ्ते। तो अभी आप लोगों ने इन गीता को आगे बांटना है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ इन्होंने अभी 5 लाख का कोटा लिया है भक्तों ने, तो 5 लाख गीता यहाँ पहुंच जाएंगी थोड़े दिनों में। तो आप सबको आज से शुरू करना पड़ेगा प्रयास। तो मेरा निवेदन है आप सब मौन रूप प्रभु से मिलिए लेक्चर के बाद, और आपके जो भी काउंसलर्स हैं उन्हें मिलिए, और सब अभी यही सोचिए कि आपने इन किताबों को कैसे बांटना है। और अगर आप प्रयास करोगे तो भगवान जरूर आपको सफलता देंगे बिना शंका के। सब प्रयास करोगे सब? पिछले साल आप में से किन किन भक्तों ने ग्रंथ के वितरण की सेवा में सहयोग दिया था? सबने तो नहीं, तो जिन्होंने नहीं दिया वो भी दें, और जिन्होंने दिया था वो और भी उत्साह से करें। आपके पंजाबी भाग के भक्तों ने आज मुझे कहा है कि वो 3.5 लाख गीता करेंगे। तो आप भक्तों को उनसे आगे रहना चाहिए। 5 लाख इस साल पूना मंदिर की योजना है, 2 से 3 लाख भी। ओके, हरे कृष्णा।
श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, भगवद गीता वितरण महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्री राधा पाद सारथी ललिता विशाखा गौरताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हरे कृष्ण।